रेडियो महाराष्ट्र 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ। कहते हैं घर में बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग अपने अनुभव, संस्कार और प्यार से परिवार को बांध कर रखते हैं। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सिटीजन फोरम के कुछ मेंबर्स। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एस सी गुप्ता, हु इज अ प्रेसिडेंट, मिस्टर एस आर कैंट, हु इज अ जनरल सेक्रेटरी, एंड एस पी सचदेवा, हु इज अ फाइनेंस सेक्रेटरी फ्रॉम सीनियर सिटीजन फोरम सेक्टर 15। आप सबका मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में।
थैंक यू
जी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी प्रोफेसर एस सी गुप्ता जी, क्योंकि आप प्रधान हैं इस फोरम की, तो सीनियर सिटीजन फोरम ये क्या है?
सीनियर सिटीजन फोरम एक संस्था है जो कि सरकार ने ऐसा चाहा है कि ये होनी चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में सरकार ने बनाया था और उन्होंने सब दूसरी जो सरकारें हैं स्टेट्स की उनको हिदायत दी थी कि आप ये सीनियर सिटीजन्स के अंदर कुछ फैसिलिटीज़, कुछ रूल्स ऐसे बनाएं जिससे कि लोगों को मिलें। लेकिन बहुत सी सरकारें ऐसी हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने अभी तक इसको लागू नहीं किया है। शायद हिंदुस्तान में अब तक 11 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को लागू किया है, जिसमें से हरियाणा का कहीं नाम नहीं है
जी,
दिल्ली है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम, कर्नाटक, ये एक स्टेट्स हैं
जी।
तो लेकिन हरियाणा में अभी नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि हरियाणा भी इसमें पीछे है। तो इसके तहत सीनियर सिटीजन हमारी जो फॉर्म है इसके तहत 15 सेक्टर में हमने कम्युनिटी सेंटर के अंदर ये बनाया हुआ है। उन्होंने MCF ने हमें जो है एक कमरा दिया हुआ है, उस कमरे के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ बैठते हैं, तकरीबन 40-50 आदमी रोज़ आ जाते हैं। अगर ज़्यादा सर्दी हो, ज़्यादा गर्मी हो, तब लोग कम हो जाते हैं, लेकिन वहाँ आते हैं। अब ये क्यों आते हैं और क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया कि ताकि लोग, आजकल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया है, हर घर के अंदर बुज़ुर्ग हैं, और कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से, कुछ लाइफस्टाइल डिफरेंट होने की वजह से हमारे देश के अंदर ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। और ये भी हम देख सकते हैं कि 2026 के अंदर जो गवर्नमेंट की प्रोजेक्टेड जो पॉपुलेशन है ओल्ड एज की, सो 173.1 मिलियन होने की आशंका है, जो कि 12.4% थी 2026 में होने की। तो ये टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वुड बी 12.454%।
जी, यानी सीनियर सिटीजन्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे समाज में। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी मिस्टर एस सी कैंट जी, जनरल सेक्रेटरी हैं, कि क्या आपको लगता है कि सीनियर सिटीजन फोरम होने का लाभ होता है सीनियर सिटीजन्स को? क्यों जरूरी है ये?
बिल्कुल, इसका लाभ जरूर होता है, क्योंकि जो जो आजकल की फैमिली, आज के इकोनॉमिक जो हमारे समाज का है ढांचा है, उसके हिसाब से, क्योंकि जो जो सीनियर सिटीजन है वो घर में अकेला रह जाता है, आइसोलेशन होती है, और क्योंकि बच्चे जो हैं बड़े होते हैं जॉब करने जाते हैं, जो NCR रीजन में खास करके बड़ी दूर डिस्टेंस, दिल्ली में कोई कहीं दिल्ली से आ रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, तो उनको घर में अकेलापन को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि कोई उनको एक जगह हो, एक मीटिंग पॉइंट हो, जो अपने उनके साथी हैं, उनके पीयर ग्रुप है, उनसे मिल सकें, बैठ सकें, अपने दिल की बातें कर सकें, जो अपनी जवानी के दिनों में जो एक्टिविटी करते रहे हैं वो भी उनके साथ मिलकर वो उनके साथ करें और इन्जॉय करें। और दूसरी कोई ऐसी जो है कोई पास टाइम करने के लिए, कोई प्लेइंग कार्ड्स है, और जो कोई ऐसी एक्टिविटी है, चेस प्लेइंग है, ऐसी एक्टिविटी वो करें ताकि उनका टाइम, उनका मन लगा रहे, तो कि अपने बोरी न फील करें वो।
जी बिल्कुल, आज के समय में देखा जा रहा है कि जॉइंट फैमिली से हटके जो आज की जनरेशन है वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रही है, और ऐसे में बुजुर्ग जो है वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाते हैं। तो अब मैं जानना चाहूंगी फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर एस पी सचदेवा जी से कि मानसिक तौर की अगर हम बात करें तो कितना ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं ऐसे में बुजुर्ग जब वो सीनियर सिटीजन फोरम से जुड़ते हैं और वहां बैठकर बात करते हैं और अपनी हॉबीज बांटते हैं?
आज के टाइम में हमारे सीनियर सिटीजन घरों से फ्रस्ट्रेशन होती है उनको, वो बच्चों के साथ पूरा हालचाल नहीं बांट सकते और बच्चे भी उनकी केयर नहीं करते, उनको प्रॉपर इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ये एक हमने जो प्लेटफार्म बनाया है, इस प्लेटफार्म में आकर के दे फील फ्री टू टॉक एंड फ्री टू गॉसिप, और यहाँ आकर के हम इनसे जो चार्ज करते हैं लाइफ मेंबरशिप के लिए 1310 रुपये चार्ज करते हैं, और एवरी डे यहाँ ताश खेलते हैं, चाय सर्व होती है, उसके लिए हम 50 रुपए पर मंथ इन मेंबरों से चार्ज करके उनको फ्री एटमॉस्फेयर
देते हैं। सचदेवा जी से एक बात में सहमत नहीं
जी,
वो ये है कि वो कहते हैं कि बच्चे ध्यान नहीं देते या वो अकेला रह जाते, तो बच्चे उनकी तरफ इसलिए ध्यान नहीं दे पाते कि बच्चों की भी अपनी लाइफ है। जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो हमारी अपनी जिंदगी थी, मैरिड लाइफ थी, नौकरी थी, दोस्त थे, काम थे। इसी तरह से अगर हम ये समझें कि बच्चे भी आज, उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, वो भी अपने जीवन में बिजी हैं, तो उनको भी हमें कुछ स्पेस दे देना चाहिए कि वो अलग अलग अपने जीवन में जिए। अगर हम ये स्पेस दे के चलेंगे तो हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। और लेकिन बच्चों को भी साथ साथ ये चाहिए कि कुछ समय अपने व्यस्त समय से निकाल करके पेरेंट्स के साथ बैठे निकालें। मैंने एक दफ़ा कहा था कि भाई अगर माँ बाप के साथ बच्चे आकर के पूरे दिन में 5 मिनट भी लगा दें, यही पूछ लें कि क्या हाल चाल है, आप ठीक हैं, बढ़िया हैं, तो भी वो समझिए कि बच्चों के लिए, बच्चों ने अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ किया
जी।
लेकिन आजकल बच्चे इतने व्यस्त हैं इस तरह के व्यस्त जीवन में कि वो इतना भी नहीं कर पाते। तो सचदेवा जी, जहाँ तक बिजी हैं हम या हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, पार्शली इट इज़ ट्रू एंड पार्शली इट इज नॉट
जी।
मैं गुप्ता जी से बिल्कुल एग्री करता हूँ, सहमत इस बात के ऊपर। और इसके साथ ही है जो मेन प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज में, वो होती है उनकी मतलब फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के उनको मेडिकल जो प्रॉब्लम होती है ड्यू टू ओल्ड एज, उसके लिए भी उनको मेडिकल अवेयरनेस चाहिए। उसके लिए जो हमारा क्लब है, हमारा फोरम है, जो सीनियर सिटीजन फोरम, हम मेडिकल डॉक्टरों से लेक्चर वगैरह करवाते हैं और मेडिकल कैंप वगैरह भी हम अरेंज कराते हैं, ताकि उनका कोई नॉर्मल जो है, जैसे डायबिटिक के लिए वो उनका चेकअप हो जाए, टेम्परेचर वगैरह, और कोई है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और लेक्चर भी करवाते हैं डॉक्टर से, ताकि उनको अपनी जो कई बीमारियाँ होती हैं जिसके बारे में पता नहीं चलता, अचानक पता चलता है बाद में, ज़्यादा सीरियसनेस हो जाती है, ताकि उनको शुरू में ही उनको नॉलेज हो जाए, पता लग जाए कि हम उसका ट्रीटमेंट करवा सकें बाद
जी। यानी कि सीनियर सिटीजन फोरम में जहाँ एक तरफ आप अपने शौक पूरे करते हैं, अपने हॉबीज को पूरा करते हैं, वहीं अपनी हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखते हैं। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज हम बात करें सीनियर सिटीजन फोरम की, आप सब उनके मेंबर्स हैं, लेकिन एक बात से हम सब एग्री करते हैं और वो ये है कि बुजुर्गों की बहुत अहमियत होती है घर में। हम कहते हैं जिस घर में बुजुर्ग होते हैं उस घर में अनुभव होता है, प्यार होता है और संस्कार भी होते हैं। तो क्या व्यूज हैं आपके, क्या कहना चाहेंगे आप हमारी सभी यंग जनरेशन को कि क्यों वो बुजुर्गों का सम्मान करें और उन्हें ओल्ड एज होम में ना भेजें?
ये बात ठीक है कि बुजुर्गों की अहमियत है यह नहीं है, आज की जनरेशन को ये बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे भी हर आदमी को बुज़ुर्ग होना है, हर आदमी को बड़ा होना है। ये तो नहीं है कि एक सर्टेन एज के बाद, आने के बाद, या जैसे ही बुज़ुर्ग होगा 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा कि उसने ऊपर चला जाना है, ऐसा तो नहीं है। तो हर एक ने रिजर्व, आप बच्चों से भी, छोटे छोटे बच्चों से जब हम पूछते हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम 15 साल के हो, ये 10 साल का है, तुम उसको ये कहते हो, तुम्हें नहीं पता ये बात, बीच में मत बोला करो। तो हम ये कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता लगा कि इसको नहीं पता, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो। इसी तरीके से जब बुज़ुर्ग बड़े हो जाते हैं तो छोटे बच्चों को जो नसीहत देते हैं, जो बातें बताते हैं, उनको उनको मानना भी चाहिए और वो उनको संस्कार भी देते हैं। अगर हम बड़े जो एक किताब हम पढ़ते हैं, कोई भी किताब अगर हम पढ़ते हैं, तो किताब पढ़ने के बाद हम कुछ सीखते हैं, उस सीखने का मतलब ये है कि उस किताब के अंदर जिसने भी वो किताब लिखी है अपने तजर्बे ज़िंदगी के निचोड़ लिखा हुआ। और अगर हम ये चाहें कि हम उन निचोड़ों को ना पढ़ें और नए तजर्बे करें, तो उतना ही समय फिर लगेगा। तो बुज़ुर्ग जो हैं हमारे लिए टाइम सेविंग हैं, जो कि पके पकाए फल हमें दे रहे हैं, जो उन्होंने अनुभव किया, खट्टे मीठे अनुभव किया, जो तजर्बा सीखा, वो बच्चों के ऊपर वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो बच्चों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इनकी बात, बुज़ुर्गों की बात एक बहुत अहमियत रखती है, इनको बताना भी चाहिए। आज के जनरेशन में जो मैं देख रहा हूँ, बच्चों के अंदर ये बात अच्छी तरह से आ गई है कि बुज़ुर्ग हमारे बुज़ुर्ग ही नहीं हैं, बल्कि अगर बुज़ुर्ग दोस्त की तरह रहें तो ज़्यादा अच्छा।
बिल्कुल,
प्यार करें बच्चों, दोस्त की तरह रहें, उनको अपना समझें, उनके अगर वो अपना डंडा चलाना चाहे, इफ़ दे थर्स्ट ऑन देयर फीलिंग्स एंड इफ दे वांट टू कमांड, दे कैन नॉट। बगैर बच्चों को प्यार करेंगे, बच्चे उनके पास आएंगे बैठेंगे, अदरवाइज जब भी बुजुर्ग घर में आएंगे या घर में बैठे होंगे बच्चों को यही कहते रहेंगे ये मत कर, यहाँ मत जा, ऐसा मत करो, जिसको हम कहते हैं क्रिटिसिज्म, टोकना, रोकना। अगर ये करते रहेंगे तो बुजुर्गों के पास नहीं जाएंगे बच्चे और नहीं सीखेंगे
जी।
तो इसका बढ़िया तरीका यही है कि बच्चों के साथ प्यार करें, बच्चों को अपना मित्र समझें, बच्चों के साथ काम करें, तो डेफिनेटली बच्चे हमसे कुछ सीखेंगे।
और बुजुर्गों के पास एक बहुत बड़ा खजाना होता है और उसे हम कहते हैं अनुभव। अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं और आगे सिखाते भी हैं। वेल, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी मिस्टर एस ए कैंथ जी कि आप क्या कहना चाहेंगे कि बुजुर्गों की क्या अहमियत होती है हमारे घरों में।
अहमियत तो बहुत ज्यादा है। मैं एक जो है वर्ष मशहूर पोएट हुए हैं इंग्लिश के, उनकी दो लाइनें मैं कहना चाहूंगा। तो नथिंग कैन बैक द आवर ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास और ग्लोरी इन द फ्लावर। We shall grieve not rather find strength in what remains behind। हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अब हमारा पुराना जीवन खत्म हो गया, हम बूढ़े हो गए, या हम इस तरह का विचार नहीं रखना चाहिए। तो हमें हमारा जो रिमेनिंग पीरियड है उसको हमें समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए उनका भी मार्गदर्शन करना चाहिए और समाज में हमें योगदान देना चाहिए। वो एक मैं और लाइन में कहना चाहूँगा, टेनिसन की मशहूर पोइट्री है, जूली सीजन की पोएम है, उसकी लाइन है लास्ट, We shall grieve not, no, death closes all, but something at the end, some work or noble note may yet be done। चाहे हम बूढ़े हो गए हैं, चाहे हम मृत्यु के नज़दीक हैं, फिर भी हम कुछ न कुछ अच्छा काम अपने समाज के लिए, अपने परिजनों के लिए, बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, पड़ोसियों के लिए हम कर सकते हैं, देश के लिए कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए करना चाहिए।
लिखा भी था ना एक हिंदी के शायर, उर्दू के शायर ने भी, आसमां के आगे जहां और भी हैं। तो हम बुढ़ापे के बाद ये नहीं कि हम बूढ़े ही हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। समाज हमारे से एक्सपेक्ट भी करता है कि हम कुछ करें और हम भी चाहते हैं समाज के लिए कुछ करें
जी।
तो इसी तरह एक उर्दू का शेर है दाग देलवी का, कहता ताबो ताबो तबा दाग जा चुके, अब हमारी बारी है, समान तो चला गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सामान तो हमारे दांत निकल गए, हमारी आई साइट कमजोर हो गई है, जो हमारी फिजिकल फैकल्टी है कमजोर हो गई है, ये सामान ही हमारा जा चुका है, लेकिन हम रह के जाने के लिए तैयार खड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस बात में निराश हों, हमें फिर भी अपना हौसला ऊंचा रखना चाहिए और शान के साथ जो बाकी का जीवन उसे बिताना चाहिए।
Exactly, you are never too old to set a new goal or dream a new dream। Well, इसी के साथ अब मैं आपसे जानना चाहूंगी सर जेवा जी, आपके क्या विचार हैं इस बारे में?
आज के बच्चों को, आज की जनरेशन को अपने बुजुर्गों की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए और उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहिए। जैसे कि बच्चों की अपनी लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों का एजुकेशन कैरियर कर बनाना है, तो उसमें भी बच्चों को चाहिए कि अपने बुजुर्गों से सलाह मशवरा करें, उनकी एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं। कहीं रिश्ता करना है लड़की का लड़के का, तो उसमें भी वो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आज के बच्चों के पास, जैसा कि गुप्ता जी ने कहा है, किसी के पास टाइम ही नहीं है बच्चे के पास आकर के मम्मी पापा को पूछ ले, पापा जी आपने रोटी खा ली, खाना खा लिया आपने, या दवाई ले ली टाइम पर आपने। अपनी वाइफ को पूछे, मधु तुमने इनको दवाई दी थी इनके टाइम पर? तो इस तरह की केयर नहीं करते जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं उनको मिलनी चाहिए सेवा।
बिल्कुल, थोड़ी सी अटेंशन भी अगर हम दें अपने बुजुर्गों को, अपने से बड़ों को, तो जरूर वो हम कह सकते हैं उनका प्यार हम प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। रेडियो मानवरचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर सिटीजन फोरम सेक्टर 15 फरीदाबाद से प्रेसिडेंट एस सी गुप्ता जी, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर एस आर कैंथ, फाइनेंस सेक्रेटरी एस पी सचदेवा जी, और आज हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन के बारे में। क्या होता है सीनियर सिटीजन फोरम, क्यों बनाया गया, लेकिन इसी के साथ हमने जाना कि बुजुर्गों की क्या अहमियत होती है घर में। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं हमारी सरकार क्या कर रही है सीनियर सिटीजन के लिए। ऐसे कई सारे प्रोविजंस हैं जो सरकार ने लागू किए हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी प्रोफेसर एस सी गुप्ता जी, कौन कौन से प्रोविजंस हैं?
गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में, जैसे मैंने पहले बताया था कि बनाया था, उसके अंदर कुछ प्रोविजंस उन्होंने रखे हैं। एक प्रोविजन जो सबसे बड़ा प्रोविजन है कि जो माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं और जिनकी इनकम नहीं है और उनका कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा है, लेकिन जो बच्चे हैं उनको उनका हिस्सा भी नहीं दे रहे, खाने पीने को भी नहीं दे रहे और मेंटेनेंस भी नहीं दे रहे। तो गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया है कि जो इस तरह एक ट्रिब्यूनल बनाया है गवर्नमेंट ने, तो वो हम जो है किसी ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स का हक है कि वो ट्रिब्यूनल में जाएं और अपने बच्चों के खिलाफ बोल सकें कि जी मेरी ऐसी प्रॉपर्टी है और मेरे को बच्चे जो हैं मेंटेनेंस नहीं देते, मेरे को तंग करते हैं। तो गवर्नमेंट के पास ये हक है कि वो जो है 10,000 रुपये तक की मेंटेनेंस जो है बच्चों को कि इनको दें, और अगर वो नहीं देते हैं और उनका नहीं कर सकते तो उनको आगे जाके ना कैद की भी प्रोविजन है कि उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के पास है कि एपलेंट ट्रिब्यूनल भी हैं, ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने कि ताकि वहाँ जाके अपने जो ये ग्रीवेंसेस जो है रिड्रेस कर सकें। उसके अलावा तो ओल्ड एज होम भी बनाए हैं
जी,
और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हर जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम ओल्ड एज होम एक ज़रूर होना चाहिए जिसके अंदर के 150 ओल्ड पीपल जो है रह सके और वहाँ उनको खाने की पीने की रहने की सब तरह की सुविधा जो है उनको मिलनी चाहिए। लेकिन शायद कोई भी ओल्ड आदमी जो है गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड ओल्ड एज होम में नहीं जाते और ना ही गवर्नमेंट ने भी कुछ इस तरह से बनाए हैं। तो जो भी जहाँ जा रहे हैं तो प्राइवेट है, और प्राइवेट में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे उनको फिर वही खर्चा देना पड़ता है कि 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार तक के ओल्ड एज होम ऐसे हैं जहाँ पे वे लोग जाते हैं और वहाँ रहते हैं। और नहीं है अगर तो घरों में भी गवर्नमेंट की तरफ से तो ये फैसिलिटीज़ है। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो भी कुछ कहा है कि जहाँ तक हो सके पार्किंग ओल्ड एज पीपल के लिए पार्किंग पब्लिक प्लेसेस के अंदर सेपरेट होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो तो उनकी लाइन अलग हो, उनको दवाएं जो हैं अलग मिले, लेकिन हम देख रहे हैं ऐसा है नहीं
जी। ऐसी सुविधाएं बहुत कम लोग उठा रहे हैं,
या तो सीनियर सिटीजन्स को पता नहीं या सीनियर सिटीजन जाके वहाँ जाके ये अपनी बातें नहीं बताते। अब एक बार मैं बैंक में गया तो बैंक में मैंने देखा बड़ी लंबी क्यों लगी हुई है, और वहाँ पे एक बुजुर्ग को चक्कर भी आ गए लाइन में खड़ा अपनी पासबुक बुक करानी। तो फैसिलिटीज़ हैं कि बैंक के मैनेजर की ड्यूटी है कि उनके लिए अलग लाइन लगाए, अगर कोई ज़्यादा ही बुजुर्ग है उनको बैठने की सुविधा दे। तो ये अगर नहीं है, हम लोगों को समाज को इन टोटल ये बात समझनी चाहिए कि बुजुर्ग हैं और इनको जो है हम फैसिलिटीज़ दें। कभी कभी मैंने देखा है सड़क के ऊपर बच्चे जो हैं किसी बुजुर्ग को खड़ा देख करके हाथ पकड़ के सड़क पार करवा देते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं है। तो इस तरह की शिक्षा स्कूलों के अंदर भी, कॉलेजों के अंदर भी और समाज के लोगों को भी ये देनी चाहिए कि बुजुर्ग जो हैं ये फालतू नहीं है
जी।
फालतू नहीं कि वो सोचते रहते हैं ये फालतू आदमी है, बूढ़े हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास अभी भी वो खजाना है तजर्बे का, अनुभव का, जिससे कि हम बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। तो सरकार कुछ कर रही है, सरकार को और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है
जी।
तो और मैं अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ओल्ड एज में क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी तरफ सरकार को और ध्यान देना चाहिए
जी। तो प्रोफेसर एस सी गुप्ता ने हमें बताया कि कौन कौन सी प्रोविजंस हैं हमारे इस देश भारत में, लेकिन ऐसी कई सारी प्रोविजंस हैं जो बाहर के देशों में हैं लेकिन हमारे इंडिया में नहीं है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी मिस्टर एस सी कैंथ जी, आप मुझे बताइए कि कहाँ फ़र्क ये रह गया है और कहाँ कहाँ हमें और काम करने की ज़रूरत है सीनियर सिटीजन्स के लिए।
देखो बाहर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ जो है, क्योंकि वहाँ अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन हो गया है, जो कंस्ट्रक्शन है वो वर्टिकल है, वहाँ मतलब फ्लैट्स में रहते हैं कई कई मंजिलों की उनकी अकोमोडेशन है जहाँ रहते हैं
बिल्कुल।
तो वहाँ जो है जो इसलिए क्योंकि अकोमोडेशन बहुत थोड़ी होती है, न्यूक्लियर फैमिली बिल्कुल मियाँ बीबी रहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप है वहाँ रहते हैं जो आजकल कपल जो है, तो जो एल्डर पीपल है ओल्डर पीपल उनके फैमिली के साथ नहीं रहते, रह भी नहीं सकते, कोई अकोमोडेशन ही नहीं है उनके, रखते भी ना रहते हैं। गवर्नमेंट ने अगर ओल्ड एज हो जाती है, अगर वो अपने घर में नहीं रह सकते, अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर सकते, तो उन्होंने ओल्ड एज होम बनाए हुए हैं। या आप घर में भी रहते हो तो आपको मतलब इतनी फैसिलिटी वहाँ कि आपको अगर ज़रूरत है मेडिकल हेल्प की, आप रिंग करो फ़ोन नंबर आपके पास, आपने शॉपिंग करनी है फ़ोन नंबर आपके पास, आपके पास वैन आएगी आपको लेके जाएगा। वहाँ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी हेल्प करती हैं ओल्ड एज में ओल्डर पीपल की, आपको शॉपिंग कराएंगे, आपके साथ जाएंगे, आपको और किसी की जरूरत है, मेडिकल की जरूरत है, कहीं जाना है या किसी रिश्तेदार को मिलना है, उसमें भी हेल्प करते हैं।
क्योंकि
हमारा जो समाज है, चाहे हमारे भी इंडस्ट्रीशन हो रहा है, अर्बनेशन हो रहा है, हमारे भी NCR में वर्टिकल कंस्ट्रक्शन चल रही है, हो रही है, फ्लैट टाइप अकोमोडेशन आ गई। पहले हम फ्लैट टाइप अकोमोडेशन नहीं थी,
अब
एक एक प्लाट पे एक एक बिल्डिंग में कई कई फैमिलीज रह रही हैं,
तो
उसमें भी मुश्किल हो रहा है आगे से, क्योंकि जो बच्चे हैं एजुकेशन ऐसी हो गई है, जरूरी उसको वहीं जब नौकरी मिले, कोई बंगलौर जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई पुणे जा रहा है, तो फैमिली को पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रख सकता।
मतलब आपका ये हुआ कि भाई हमारे देश में अभी फैसिलिटीज ओल्ड एज के लिए बड़ी कम है,
कम है, लेकिन फिलहाल हमें इस कंसेप्ट की तरफ हमारा देश जाना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारी सिविलाइजेशन अलग है उनसे, हम ज्यादा फैमिली में रहना चाहते हैं जब तक हम पॉसिबल है। हम नहीं चाहते भी कि ये कंसेप्ट उसको वेस्टर्न कंसेप्ट को यहाँ हमारे देश में लागू किया जाए, लेकिन हम चाहते हैं भी फैसिलिटी जरूर होनी चाहिए, जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, फ्री चेकअप, मेडिकल चेकअप जो हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, उनको अवेलेबल होनी चाहिए जो सीनियर सिटीजन है। इसलिए फ्री राइड है, इवन रेलवे का NCR में जो लोकल ट्रेन चलती है उसमें पास, फ्री पास होना चाहिए, और जो बसेज हैं NCR में चलती उसमें भी उनको फ्री राइड होना चाहिए। और वैसे हरियाणा जो पीछे करनाल में फंक्शन हुआ था सीनियर सिटीजन का, हमारे CM श्री हुड्डा जी ने एड्रेस किया था, वहाँ उन्होंने अनाउंस किया था कि 1 जनवरी से सीनियर सिटीजन को फ्री राइड होगा जो हरियाणा स्टेट की बसेस हैं। लेकिन ये मैं अभी मुझे कंफर्म नहीं कर सकता ये शुरू हो गया है कि नहीं हो गया है, आशा करते हैं अगर नहीं हुआ तो सरकार जल्दी शुरू कर देगी। तो इसके साथ और है जो सीनियर सिटीजन है, दे आर वेरी वल्नरेबल टू मतलब अटैक्स फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस को सतर्क रहना चाहिए, उनको प्रोवाइड करना चाहिए, उनके पास उनका फ़ोन नंबर होना चाहिए ताकि उनको कॉन्टैक्ट कर सकें भी आपको कोई ज़रूरत है, गाहे बगाहे उनको कॉन्टैक्ट करते रहने चाहिए फ़ोन के ऊपर कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी से। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को अगर नहीं है, है तो सही, सुनते तो है लेकिन इस पे प्रैक्टिकल अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा ये कहना मुश्किल है।
यानी कि अगर सरकार फैसिलिटीज या सुविधाएं निकालती भी हैं बुजुर्गों के लिए तो उसकी अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं है,
लोगों को पता नहीं है। अभी जैसे कि गुप्ता जी ने बताया है कि ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, उसमें ओल्ड पीपल जो है दे कैन फाइल देयर पिटीशन टू गेट फैसिलिटीज फ्रॉम देयर चिल्ड्रन।
जी,
इसी तरह से एक इन्होंने ये किया है कि अगर माँ बाप ने, फादर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है बेटे के नाम, इसके बाद बेटा जो है उसकी परवाह नहीं करता, तो रिवर्स मॉर्गेज फैसिलिटी गवर्नमेंट ने की है कि अगर फादर आकर के हमें पिटीशन देता है, हम वो रजिस्ट्री जो बेटे के नाम फादर ने करा दिया है गलती से वो रिवर्स हो जाएगी और फादर को प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी।
और रिवर्स होने से पहले पहले 10,000 रुपए हर महीने देने पड़ेंगे
बच्चे। यहाँ फरीदाबाद में भी अभी पिछले दिनों ही एक ट्रिब्यूनल की मीटिंग हुई थी जिसमें ऐसे ऐसे पेरेंट्स आए थे जिनको खर्चा नहीं मिलता था, किसी को उन्होंने 5,000 रुपया, किसी को 3,000 रुपया, लड़कों को बुलाया था वहाँ, उनको कहा गया था कि इनको फैसिलिटी दो, फिर कुछ बच्चों ने एग्री किया था, जो बच्चे एग्री नहीं करते वो कहते हैं ये अपने पेंशन लिए बैठे हैं, ये अपने पास पैसा बहुत है इनके पास, वो हमें देते नहीं है। तो इस तरह का वो गवर्नमेंट कहती है उनको भूल जाओ, जो कुछ है उनका पढ़ा रहने दो, आप इनको फैसिलिटी दो। तो अच्छा, फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हेजिटेट करते हैं कि मैं अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा कर दूं।
हाँ, बिल्कुल।
और वो अंदर ही अंदर तड़पते रहते हैं और उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती, दुखी रहते हैं। गवर्नमेंट उसमें जब तक गवर्नमेंट को बताओगे नहीं, गवर्नमेंट फैसिलिटी क्या देगी आपको।
जी,
जाने के लिए लोगों को अपना मन पक्का करना चाहिए कि हमें अपना बेटा जो है खर्चा नहीं देता, बहू जो है सेवा नहीं करती, तो ये कहने को भी कई लोग हेजिटेट करते हैं।
जी, या हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं गैप रह जाता है सरकार के बीच में और सीनियर सिटीजन्स के बीच में। कई बार जो है सरकार अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाती है और कई बार लोग अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं। इसी वजह से फैसिलिटीज अगर होते हुए भी जो सीनियर सिटीजन्स है उस फैसिलिटीज का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। प्रोफेसर SC गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप प्रेसिडेंट है सीनियर सिटीजन फोरम के, एक बहुत अहम मेंबर है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि वो किस तरह से अपना बर्ताव रखे बुजुर्गों के प्रति? कोई ऐसी बात जो आपको खटकती हो कि आज की जनरेशन को या फिर यंग लोगों को इस तरह का व्यवहार या इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए?
इससे पहले कि मैं आपकी इस बात का जवाब दूं, मैं 2-4 बातें और छोटी छोटी सी जो समस्याएं हैं सरकार का ध्यान बुजुर्गों की तरफ लाना चाहता था।
जी,
एक तो ये है कि बच्चों हमें जो है थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। दूसरा ये है कि जो छोटे छोटे काम हैं, जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, और छोटी प्रॉब्लम्स हैं, एमसीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए बैंक्स की प्रॉब्लम्स हैं। हम जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे जैसे आज के लैंग्वेज में कि धक्के खाने पड़ते हैं सब जगह जा करके। अगर इन सबको, जो दफ्तर वालों को, गवर्नमेंट को, बैंक्स को, ये एक लेटर भी लिखा जाए कि सीनियर सिटीजन्स को प्रॉपर केयर इनकी की जाए जब वो आ जाते हैं। वैसे तो हमें आना ही नहीं चाहिए, घर व बच्चे सब काम करें, लेकिन अगर हम करते हैं तो हमें जो हमें वो कुछ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, इसकी तरफ ध्यान दें। दूसरी बात जो ज़रूरी है, सिक्योरिटी। हमारी सिक्योरिटी कोई नहीं, घर में अगर अकेले रह गए या कहीं भी जा रहे हैं तो अकेले हैं, तो पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, उस मोहल्ले की तरफ से जिसमें हम रह रहे हैं, हमें सिक्योरिटी कोई ना कोई प्रोवाइड गवर्नमेंट को देनी चाहिए
जी।
तो सिक्योरिटी नहीं है अगर, तो लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है, खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि सब आजकल नौकरी करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली, जैसे मैंने पहले ही बताया था, तो न्यूक्लियर फैमिली में सब लोग चले जाते हैं, पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं, तो घर की वो शायद उनको बच्चे, कई बार कई घरों में मैंने देखा है कि चौकीदारी मानते हैं, लेकिन वो चौकीदारी क्या, जो अनेबल हो फिजिकली वो क्या चौकीदारा करेगा
जी।
तो इसलिए उनको अपनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ना कि घर की सिक्योरिटी की। सो गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, एंड वी आर टेकिंग अप दीज क्वेश्चन विद आवर डिप्टी कमिश्नर एंड अदर कंसर्न डिपार्टमेंट्स, एंड वी आर गोइंग, सो एंड वी विल सी दैट लॉट इज डन
जी
फॉर द सीनियर सिटीजन पीपल।
यानी कि आप चाहते हैं कि समाज जो है वो थोड़ा सा और सतर्क हो जाए, आपको ज्यादा और फैसिलिटीज मिले समाज की तरफ से, ताकि सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ी सी और सुविधा हो जाए उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके।
वी डोंट वांट फैसिलिटीज, वी वांट के मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो हमें मिलनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए कम से कम।
बिल्कुल।
इसके साथ ही जैसे आजकल मतलब ट्रैफिक बढ़ रहा है, फास्ट ट्रैफिक बढ़ा NCR में, बड़ा फास्ट है, जो सीनियर सिटीजन है उनको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे वेस्ट में है, वहाँ पेलिकन क्रॉसिंग होती है, कोई बटन दबाए तो लाइट हो जाए, तो ग्रीन लाइट ताकि वो गुजर सके। वैसे तो जयपुरा क्रॉसिंग है, लेकिन कोई ऑब्जर्व नहीं करता उसके ऊपर, उनका सख्ती से इस पर अमल होना चाहिए, ताकि सीनियर सिटीजन अपना आराम से बिना किसी खौफ के वो
किस तरह के बदलाव होने चाहिए जिस वजह से सीनियर सिटीजन को थोड़ी सी और सुविधा मिले?
एक तो जो पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट्स है, जैसे बैंक्स है, बिजली डिपार्टमेंट है, इनमें एक अलग काउंटर होना चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू दी ओल्ड पीपल। वो लोग खड़े खड़े, जैसे कि गुप्ता जी ने बताया है कि बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है लाइन में पासबुक पूरी कराने के लिए किसी बैंक में, और वो वहाँ बेहोश होकर गिर गया। तो इस तरह से गवर्नमेंट को फैसिलिटी देनी चाहिए हर जगह, मतलब होनी कंपल्सरी होना चाहिए डिपार्टमेंट के लिए कि वो फैसिलिटी काउंटर जो है ओल्ड सिटीजन के लिए बनाया जाए। दूसरा, हम चाहते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे हॉस्पिटल हैं उनमें भी सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी 25% डिस्काउंट मिलना चाहिए, ताकि लोगों को फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सके, और दे शुड बी फ्री टू गेट देयर मेडिकल चेकअप टू अवेल द मेडिकल फैसिलिटीज
जी। बिल्कुल।
एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट को जो करना चाहिए, जो सीनियर सिटीजन, जो एल्डरली पीपल हैं, ओल्डर पर्सन हैं, जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, जब बच्चों ने उनको रखा हुआ है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से इनकम टैक्स की लिमिट में विदाउट एनी रेफरेंस टू एज उनको एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए।
बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने,
एग्जेम्पशन मिलनी
जी। अब इसी के साथ, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो एक छोटा सा मैसेज मैं आप सबसे चाहूंगी कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारी यूथ को, हमारी सोसाइटी को?
सबसे जरूरी एक ही मेरे मन में आ रहा है कि हमें एल्डरली पीपल को, वी शुड लव आवर चिल्ड्रन एंड वी शुड नॉट थ्रस्ट अपॉन आवर फीलिंग्स एंड आवर कमांड्स ऑन देम
जी।
सबसे ज़रूरी है, हमें बच्चे जो है बुज़ुर्गों को पसंद नहीं करते, बुज़ुर्ग बच्चों को पसंद नहीं करते, रेसिप्रोकल हो गया है। बच्चे कहते हैं बुज़ुर्ग बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए, ख़राब हो गए, ये कहा नहीं मानते, तो बच्चे कहते हैं बुज़ुर्ग बाबा का दिमाग ख़राब हो गया, सीधे सीधे कहते हैं। अब बाबा का दिमाग खराब नहीं हुआ, इस उम्र में आकर के ओल्ड एज की फैसिलिटी अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दिखाई कम दे रहा है, सुनाई कम दे रहा है, चलने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर बच्चा जो आके अपने पिताजी के पास या बाबा के पास आके कुछ बोलता है और उनको सुनाई कम दे रहा है, तो दो बार के बाद तीसरी बार आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको तो सुनता ही नहीं, मैं आपसे क्या बात करूँ। तो सिमिलरली मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अपने बुजुर्ग दोस्तों से, भाइयों से, समाज से, कि हमें अपने बच्चों को इतना प्यार करें कि उनको बुजुर्ग जो है अपने दोस्त जैसे लगे।
जी बिल्कुल, तो कि फ्रेंडली रिलेशन जो है वो डेवलप करें
बच्चों के साथ, और अपने जो विचार हैं, अपनी बातें हैं, उनके ऊपर लादे नहीं, क्योंकि जिस उम्र में जो उन्होंने देखा, आज वो समय बड़ा बदल गया है, जनरेशन गैप आ गया है, सब चीजें बदल गई हैं, तो उसके मुताबिक द ओल्डर पीपल शुड अडैप्ट टू द न्यू सर्कमस्टांसेस।
जी बिल्कुल,
देन देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम फ्रॉम द यंगर साइड।
जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एसआर कैंट जी हमारे लिसनर्स को?
ऐसे है जो समाज है, इसमें जो है एल्डरली पर्सन है या यंग हैं, बच्चे हैं, उनके मतलब कोऑर्डिनेशन से ही समाज चलता है, आपस में मिल के रहना चाहिए। बुजुर्ग जो यंग तबका है उनको, एल्डरली पीपल हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो एल्डरली ओल्डर पर्सन है उनको भी बच्चों से प्यार करना चाहिए। उनके विचार भी जिंदा ही विचार हैं, डेवलप हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, आजकल मतलब मोबाइल पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हाथ में होती है बच्चों के, आज के नौजवान जो हैं उनके भी विचार को उनको उनका भी आदर करना चाहिए जो पुरानी पीढ़ी है, और बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको भी अपनी संस्कृति के, वैसे तो मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं वो बच्चे, उनके उनके पेरेंट्स को मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हमारे एल्डरली पीपल हैं उनका ये फर्ज बनता है कि उनमें जो हमारी संस्कृति के जो हैं गुण, उनमें वो रोपित करने चाहिए, उनको समझाना चाहिए हमारी संस्कृति क्या थी और क्या है,
क्या
इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं जिससे हमें बचना चाहिए। जैसे आजकल फास्ट फूड खाते हैं बच्चे, आजकल बड़ा पसंद करते हैं, टीवी पे आप बैठे रहते हैं, नूडल्स खाते हैं, बर्गर खाते हैं, जो कि बड़े नुकसानदेह हैं, उस उन मुल्कों में जहाँ से चली ये चीज़ें वो इनको ख़त्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ये हमारे समाज में इन पर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, चलन हो रहा है, ये बड़ा घातक चीज़ है बच्चों की सेहत के लिए, इसमें ज़्यादा बीमारियां होने की आशंका है हमारे, अगर हमने बीमारियों से बचना है, हमारी जनरेशन जो है आगे जो यंग आ रहा है, जो जनरेशन हमारी, जरूरी नहीं यंग हो, यंग भी हैं, यंग तो हमारी जो पॉपुलेशन में उनकी परसेंटेज ज़्यादा है यूथ की, लेकिन उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, अगर इन चीज़ों में इंडल्ज करेंगे तो उनके, मैं समझता हूँ उनके ये सवालिया निशान होगा उनकी सेहत के ऊपर, जो देश की इकोनॉमी के लिए और देश के भविष्य के लिए बड़ा घातक होगा।
जी बिल्कुल, एसपी सर देवा जी आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सभी लिसनर्स को?
मैं पर्टिकुलरली जो सीनियर सिटीजंस हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने परिवार में अथॉरिटेटिव ट्रीटमेंट ना दे करके एक फ्रेंडली ट्रीटमेंट उनको ऑफर करें, दे कैन ट्रीट विद देम विद लव एंड अफेक्शन, तो ताकि बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्ट हों कि हमारे ऊपर ये अथॉरिटी नहीं है बल्कि दे आर मोर हेल्पफुल टू अस, तो वो बच्चे महसूस करें और उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। पेरेंट्स को अथॉरिटी जो है, ये काम मत करो, ये काम क्यों कर दिया, क्यों जा रही है, बहू कहाँ जा रही है, ये जो है ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनको अपना एटमोसफियर है बच्चों को, अपनी आज़ादी दें और अपनी अपनी फैसिलिटी बच्चों से प्यार से कमांड करें, अथॉरिटी ना इम्पोज करें।
जी बिल्कुल, एससी गुप्ता जी अब आपसे जानना चाहूंगी, जाते जाते क्या आप कहना चाहेंगे?
मैं ये मैसेज एक देना चाहता हूँ, दैट द ओल्डर पीपल मस्ट ट्रांसफर देयर कल्चर बिकॉज दे आर द कस्टोडियंस ऑफ दिस कल्चर एंड दे मस्ट ट्रांसफर दिस कल्चर ऑन टू द न्यू जनरेशन।
जी हाँ,
मैं ये चाहूंगा कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, where the youth has not been broken into narrow domestic walls. यही हमारा भविष्य है।
यही हमारा भविष्य है। Personally, I believe कि inside every older person is a young person. बस हमें उसे young person को ढूंढने की ज़रूरत है। और इसी के साथ आपको सबका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने अनुभव हमारे साथ बांटे, जो बहुत ही अमूल्य है, मैं कहूँगी valuable है। Thanks a lot. इसी के साथ मुझे यानी अपनी सोच राष्ट्र को दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय कहने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइफ।